याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है,
याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती है।
मधुबन का हर कण कहता है,
हम बच्चों का मन कहता है,
याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है बाबा, याद तुम्हारी आती
है। ओम शांति। हम सभी प्यारे बाबा के 38वें स्मृति दिवस पर विशेष बाबा के घर में पहुंचे हैं। बाबा की पालना के अनुभव हम अपनी दादियों के मुख से, वरिष्ठ भाइयों के बहनों के मुख से सुन रहे हैं। साकार में 33 वर्ष कैसे बच्चों की पालना की, जिन्होंने उपालना ली है, उपालना के दिन उन्हें विशेष 18 जनवरी पर याद आते हैं, लेकिन अव्यक्त पालना भी 38 वर्षों से हम सभी बाबा से लेते आ रहे हैं। और उस पालना में बाबा की भिन्न भिन्न विशेषताओं का अनुभव अव्यक्त रूप में भी हम सब ने किया है। साकार बाबा की एक रस स्थिति के अनुभव बहुत सुंदर बड़ी बहनों के मुख से सुनने को मिलते हैं, क्योंकि बाबा के सामने बहुत सी अनेक प्रकार की परिस्थितियां आईं। जिस बाबा ने इतना सम्मान पूर्वक अपना जीवन जिया, जिसको राजाओं महाराजाओं के अंदर भी आदर प्राप्त होता था, सभी बहुत ऊंचे व्यक्तित्व के रूप में बाबा को जानते थे, शिव बाबा की प्रवेशता होने के पश्चात आप सबने इतिहास सुना है, कितने विरोध हुए, कितना सामना करना पड़ा। बाबा तो कई बार हंसी में कहते थे, एक सिंधी में कहावत है, वाट बेंदे ब्राह्मण फाथो, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, क्योंकि बाबा जिन्होंने कभी भी बच्चों के द्वारा या समाज के द्वारा अपमान सुना नहीं, ऐसा कोई शब्द नहीं सुना, शिव बाबा की प्रवेशता हुई और विरोध का सामना हुआ। विशेष करके जब शिव बाबा ने कहा गीता के महावाक्यों के आधार पर, काम और क्रोध नरक के द्वार हैं, तो ये महावाक्य सुनते ही जिन्होंने अपने जीवन में पवित्रता की धारणा की, और विशेष करके कुमारियों ने, माताओं ने छोटी उम्र में जब दृढ़ता से संकल्प ले लिया कि भगवान कह रहा है कि तुम्हें पवित्र रहना है, काम महाशत्रु है, तुम्हें विष का प्याला न पीना है न पिलाना है, तो बाबा की इस श्रीमत को माताओं बहनों ने इतनी दृढ़ता पूर्वक पालन किया, जिसके फल स्वरूप परिवारों के अंदर अनेक प्रकार के झगड़े होने लगे, और उन झगड़ों का मूल कारण सभी ने सोचा कि दादा कोई कलकत्ता से जादू सीख करके आए हैं और वो हमारी कन्याओं माताओं को भड़का रहा है, अपने में फंसा रहा है, इसलिए बाबा का बहुत विरोध किया। वो इतिहास तो आप सबने पढ़ा भी होगा और दादियां बहुत विस्तार पूर्वक सुनाती हैं। उसमें भी बाबा कितना अचल अडोल और एक रस स्थिति में रहे, हर प्रकार का सामना करते हुए संपूर्ण एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा के ऊपर इतना संपूर्ण निश्चय था जो कोई भी बात बाबा की स्थिति को हिला नहीं पाई। कल हमारी मीटिंग के बीच में ग्राम विकास प्रभाग के भाई बहनों के सामने एक बहुत छोटा सा और सुंदर अनुभव हमारी मोहिनी बहन जी ने सुनाया और वो बहुत दिल को लगने वाला था। एक बार बाबा मधुबन से आबू से अमृतसर के लिए गए और अमृतसर में नई क्लास थी। एक भाई बहुत समय से ज्ञान में आता था, उसकी युगल बहुत एंटी थी और इतनी एंटी थी जो बहुत गालियां देती थी, पति को बहुत तंग करती थी। कहने लगी कि जब वो क्लास के लिए आता था तो उसके सारे कपड़े उठा करके पानी में भिगो देती थी, जाएगा कैसे। तो इस प्रकार से बहुत विरोध करती थी अपने लौकिक पति का। तो जब बाबा वहां अमृतसर में क्लास करा रहे थे तो क्लास के बीच में आ गई और क्लास के बीच में बाबा को सभा के बीच में गालियां देना शुरू कर दिया और इतनी बहुत ज्यादा गालियां दी जो गाली देते देते बेचारी थक गई और बाबा उसकी तरफ देखता रहा और बाबा बोला बच्ची को पानी पिलाओ। पानी भी पिलाया गया लेकिन पानी भी उसने गुस्से में पिया और फिर गुस्से में पानी लेकर के पी करके गिलास फेंक दिया और फिर से गाली देने लगी। तो बाबा ने कहा बात क्या है आखिर। तो फिर उसने अपने पति की ओर इशारा किया कि ये मेरा कहना नहीं मानता है। तो बाबा ने कहा अच्छा अपने पति को ले जाओ यहां से। तो उसका पति जाने के लिए तैयार नहीं था, उसने कहा ये सुधरने वाली नहीं है, ये बहुत तंग करती है। लेकिन बाबा का कहना माना और वो गया। कुछ दिन उसके साथ रहा, फिर भी झगड़ा चलता रहा क्योंकि मूल बात तो प्योरिटी की थी, उसकी और कोई गलती तो थी नहीं। लेकिन धीरे धीरे उसके मानसिक स्थिति में बाबा की ऐसी अचल अडोल और एक रस स्थिति देखने से उसके जीवन में परिवर्तन आया और आखिर वो अभी तक दोनों ही ज्ञान में चलते हैं, ऐसा बहन जी ने अपना अनुभव सुनाया। तो बाबा का विरोध, बाबा को कितनी बच्चों के द्वारा समाज के द्वारा कितनी गालियां सुननी पड़ी, कितना सहन करना पड़ा, कितना समाना पड़ा, लेकिन कैसे बाबा अपनी एक रस स्थिति बना करके रहे। कितना अखबारों में उल्टा छपा, कितना विरोध हुए आप सभी जानते हैं। अभी तक भी कहीं कहीं परम मित्र हम सबके हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके भी हैं, जिसके नाम से बहुत उल्टी उल्टी बातें कभी कभी छाप देते हैं। अभी तो बहुत कम हो गया है लेकिन शुरू शुरू में जब हम लोग बाबा के पास आए हैं उस समय भी बहुत विरोध थे और बहुत सुनना पड़ता था। तो वो समय था जब अपनी स्थिति को एक रस रखना, एक बाबा में संपूर्ण विश्वास जो किसी भी प्रकार से हिले नहीं, डगमग नहीं हो। तो बाबा ने अपने जीवन से वो एक रस स्थिति का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया और अभी हम सबको कह रहा है कि बच्चे समान बनो, कदम पर कदम रख करके ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। तो कई बाबा के बच्चे कह देते हैं हमने तो साकार को देखा ही नहीं है, लेकिन साकार संपूर्ण रूप में अभी हम सबके सामने है, कहीं गया नहीं, उसी का यज्ञ है, उसी की पालना है, उसी की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं और उसी की छत्र छाया में ये परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज भी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी ही पैदा हो रहे हैं, कोई बहन के नाम से कोई दादी के नाम से रचना नहीं हो रही है। तो ब्रह्मा बाबा की हाजिरी में ही ये सब कुछ हो रहा है, सिर्फ इन स्थूल नेत्रों से वो छिप गया है। हमें ये स्थूल नेत्रों से देखने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए हम कहते हैं हमने बाबा को देखा ही नहीं है। लेकिन बाबा की चरित्र भूमि, बाबा की कर्म भूमि, बाबा की इस बेहद भूमि पर आप सबको बाबा की हाजिरी का अनुभव होगा। हम आप सब से एक बहुत दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे दिन पर आप सभी आए हो। 18 जनवरी का कल दिन है, बाबा की हाजिरी का अनुभव करना। हर जगह पर जैसे बाबा हाजरा हजूर है, चाहे बाबा के चित्रों के सामने, बाबा के कमरों में आप जाएंगे, झोपड़ी में जाएंगे, कहीं पर भी बाबा के स्थानों को देखेंगे, तीर्थ स्थानों का चक्कर लगाएंगे, कैसे बाबा करण करामन हार बन करके सब कार्य कर रहा है, करा रहा है, उसकी छत्र छाया में सब कुछ हो रहा है। और वो बाबा अपनी अथक सेवाएं अभी तक भी हम बच्चों को दे रहा है। इसलिए इस टॉपिक को मैंने पसंद किया। हमने कहा कि अव्यक्त रूप में बाबा ने एक रस और अथकपन का हम सब बच्चों के सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज 38 वर्षों से दादी के माध्यम से बाबा कितना अथक और एक रस स्थिति से हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। आप सबको जो पुराने हैं उनको पता है कि बाबा इस सभा में जब मधुबन के अंदर छोटे हाल में या कमरे में आते थे तो 14-14, 15-15 घंटे बैठ करके एक रस स्थिति में बैठ करके बच्चों को पालना देते थे, मिलते थे। और एक एक पर्सनल बाबा का बच्चा बाबा के सामने वरदान लेने आता था। मैं समझता हूँ हम लोगों ने करीब कई बार 15-15, 20-20 मिनट अकेले में बाबा से रूह रियान की है, बातें की हैं। और बहुत प्यार से बाबा दृष्टि देते, एक एक वरदान देते, शक्ति देते। और कई बार छोटा सा परिवार था और बाबा की वो पालना व्यक्त रूप में हम सबको मिली। तो बाबा की पालना में एक रस और अथकपन को हमने बहुत गहराई से नोट किया कि जरा भी चेहरे पर, चाहे वो 14 घंटा बैठा है, गुलजार दादी के तन में है, दादी को अपने शरीर का भान नहीं है, लेकिन बाबा बैठ करके उसी मुस्कुराहट से, उसी एकरस स्थिति से कैसा भी बच्चा सामने आए, चाहे वो भूले करके ही क्यों ना आया हो, बाबा जानी जाना हार उसकी गलतियों को जानता भी है, लेकिन फिर भी कभी उसके सामने आने पर महसूस नहीं कराता कि तुम्हारी ये गलती है, तुमने ये गलती की है। एक एक बच्चे की विशेषता को देख करके उसको आगे बढ़ाना, उसमें उमंग उत्साह के पंख लगा देना, उसकी बीती को भुला देना, उसको क्षमा कर देना, ये बाबा ने प्रैक्टिकल कर्म करके हम सबको सिखाए हैं। एक दिन की बात है, बाबा अव्यक्त रूप में दादी के तन में मेडिटेशन हॉल में आए हुए थे और मैं बाबा के महावाक्य उस समय हाथ से लिखता था पूरी रात। बाबा जो कुछ बोलते थे, एक एक भाई को बहन को वरदान देते थे, तो मुझे सेवा मिली थी कि जो बाबा बोलते हैं तुम नोट करो, क्योंकि उस समय टेप रिकॉर्ड नहीं थे, तो टेप भी नहीं करते थे और टाइप तो अभी कंप्यूटर है तो डायरेक्ट करते हैं, बाबा बोलता है और टाइप कर लेते हैं। लेकिन उस समय जितना कुछ बाबा बोलते थे रात भर, तो मैं हाथ से लिखता था और लिख करके सुबह टाइप करके फिर सभी सेंटर्स को भेजता था। तो एक दिन की बात है, रात को करीब 12-1 बजा होगा, 5-6 भाइयों का ग्रुप ऐसे सामने बाबा के खड़ा था और बाबा संदली पर बैठ करके उनको वरदान दे रहे थे। अचानक एक भाई को पता नहीं क्या हुआ और वो बाबा के ऊपर गिर गया और इतनी जोर से गिरा दादी के ऊपर। बाबा तो अव्यक्त है, दादी तो साकार में थी सामने, जो इस हाथ के ऊपर पूरा उसका लोड आ गया शरीर का, और बाबा कहता बच्चे को उठाओ, बच्चे को उठाओ। तो हम सभी जो आजू बाजू बैठे थे जब तक दौड़े, दौड़ के गए और उसको जब हाथों से उठाया तो उसका तो नशा था, अलग प्रकार का कुछ हुआ था उसको, बेहोशी की हालत में ही था। लेकिन बाबा एक सेकंड के लिए ऐसे हाथ को लेकर के और ऐसे साल के नीचे ऐसे कर लिया, कुछ बताया नहीं क्या हुआ, और फिर वैसे ही बच्चों से मिलना शुरू कर दिया, फिर वैसे ही मुस्कुराहट, फिर वही बाबा का मिलन। और फिर 6 घंटे तक बाबा, सुबह 7 बजे तक बाबा उसी तरह से मुरली चलाते और मिलते रहे। तो सवेरे जब बाप दादा ने विदाई ली, उसके बाद दादी को तो दर्द होगा ना, हाथ में चोट लग गई थी, बाबा तो पार्ट बजा के चला गया। तो दादी को हाथ में जब थोड़ा दर्द हुआ तो बोला कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, तो उसको पट्टी बांधी, भूल गया था सबने। तो हम लोग गए दादी के पास, हमने पूछा दादी क्या हुआ आपको, कैसे लगा? अरे पता नहीं, रात को तो ठीक था, अभी बड़ा हाथ दर्द कर रहा है। तो हमने कहा दादी ऐसे ऐसे रात को बाबा के ऊपर एक भाई गिर गया और अचानक गिरा, इसलिए हम लोगों को पता नहीं चला। बोला आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग तो दूर बैठे लिख रहे थे, लेकिन अचानक गिर गया। तो ऐसे ऐसे बाबा को पार्ट बजाते हुए कई बार अथक और एक रस, जरा भी थकावट का चिन्ह चेहरे पर नहीं, बाबा जाते हैं, उसके बाद दादी इतनी स्फूर्ति से चलने लगती है, जाती है, जो आप देखते रह जाओगे कितने घंटे बैठने के बाद कोई इतनी फास्ट जा सकता है। तो बाबा का वो स्वरूप सामने आता है। बाबा कहता है बच्चे बहुत भिन्न भिन्न परिस्थितियां आप सबके सामने आती हैं, आएंगी, लेकिन बहुत काल का अभ्यास एक रस स्थिति में रहने का चाहिए। घड़ी घड़ी मूड चेंज न हो, स्थिति बदल न जाए। बाबा ने क्या किया जो ऐसी स्थिति बनी, अगर इस पर आप सभी थोड़ा सा विचार करें कि बाबा को एक बाबा दूसरा न कोई, एक को देखना है, एक से सब रस लेना है, एक से मिलन मनाना है, इतना संपूर्ण निश्चय, एक बल और एक भरोसा, इस निश्चय के बल के आधार से बाबा ने अपनी एक रस स्थिति बना ली, ब्रह्मा बाबा ने, और उसी आधार से सहन भी किया, सुना भी, समाया भी, बच्चों की हलचलें भी देखी, और कोई ने कुछ गलत भी किया उसको भी परवश समझ कर, निर्दोष समझ करके क्षमा कर दिया, गुस्सा नहीं किया, अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ा। हम बच्चों को भी बाबा यही प्रेरणा देते हैं, यही शिक्षा देते हैं कि अगर कोई आत्मा किसी संस्कार के, किसी बुराई विकार के वशीभूत होकर के, परवश होकर के उल्टा करती है, तो आप अपने हाथ में ला नहीं उठाओ, गुस्सा नहीं करो, लेकिन उसको क्षमा करो। अगर कोई ला उठाता है तो उसके कई कारण हैं। वो अपने आप को अधिकारी समझता है, वो अपने आप को बड़ा समझता है, या अपने आप को संबंध के आधार से, ब्लड कनेक्शन के आधार से नजदीक की समझता है, इसलिए अपने नजदीकियों की गलती, छोटी सी गलती को भी वो बहुत बड़ी महसूस करता है, और उसके आधार से वो अपनी स्थिति को बिगाड़ रहा है। इस बात को थोड़ा सा गौर करके आप सभी विचार करके देखना कि हमारी स्थिति अगर डगमग होती है, हलचल में आती है, एक रस नहीं रहती है, तो उसके क्या कारण है। बाबा तो ऐसा बन गया और बाबा संपन्न संपूर्ण बन करके हमारी पालना कर रहे हैं, हमको भी उसी स्टेज पर पहुंचना है और बाबा के समान हम बनना चाहते हैं, हम सबका संकल्प है। तो कल के दिन ये वरदान बाबा से हम सभी लें कि बाबा जैसे आप अपनी स्थिति को एक रस रखते हो, जरा भी चेहरे पर भी स्थिति का प्रभाव नहीं आता, ऐसा नहीं चेहरा बदल जाए, चेंज हो जाए, सिलवट आ जाए, थकावट का अनुभव हो, क्योंकि अंदर की स्थिति का दर्पण ये चेहरा है। जो कुछ होता है अंदर चलता है, आप कितना भी छिपाएं, बताएं या न बताएं, लेकिन चेहरा जरूर बता देता है। चेहरे पर वो चिन्ह दिखाई देते हैं कि हमारे अंदर की स्थिति क्या है। तो हम सभी अगर अपनी स्थिति को एक रस बनाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छी बनाना चाहते हैं, तो कुछ बातें जो हम ध्यान पर रखते हैं और बाबा ने हम सबको पढ़ाई भी हैं, वो कुछ बातें हम आपके सामने रखते हैं। क्योंकि ज्ञान सबके पास है। बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा नॉलेज फुल बन गया है, फुल है, सबके पास कमी नहीं है। ड्रामा का भी ज्ञान है, नथिंग न्यू का भी ज्ञान है, पार्ट का भी ज्ञान है, लेकिन उसका स्वरूप बनना, उसका अनुभवी बनना, उसको अच्छी तरह से चिंतन में ले आना, क्योंकि स्थिति का आधार स्मृति है। जिस स्मृति में हम अधिक समय रहते हैं, स्मृतियां कैसे रहती हैं, उसका आधार चिंतन है। जो चिंतन आत्मा करती है, जो उस प्रकार का उसका सोच और विचार चलता है, वैसी उसकी स्मृतियां बन जाती हैं। और स्मृतियों के आधार से अगर वो व्यर्थ और नेगेटिव हैं, अगर किसी के परदोष पर चिंतन की सोचने की आदत पड़ी हुई है, तो स्मृतियां भी वैसी ही बन जाती हैं और उसका परिणाम, उसकी स्थिति भी बार बार नीचे ऊपर हलचल में आती है। इसलिए हमारा चिंतन पहले चेंज होना चाहिए। चिंतन को चेंज करने के लिए बाबा पढ़ा रहा है, मुरली रोज सुना रहा है, रोज कहता है बच्चे रेगुलर पढ़ो, एक दिन भी मुरली मिस नहीं करो। भले रिवाइज कोर्स है, कई बार रिवाइज हुआ है, भले आपको लगता है कि ये तो हमने सुना हुआ है, रिपीट हो रहा है, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी है, वो स्वरूप में नहीं आया है, इसलिए उसको बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, जिससे वो स्वरूप बन जाऊं। तो जितना आत्मा उस स्वरूप में स्थित रहती है, उसकी स्थिति अच्छे से अच्छी बनती जाती है। दूसरों के विशेषताएं क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, आज बाबा अगर अपने बच्चों की कमियां देखता, इस बारी भी अव्यक्त बाबा ने कहा खास 31 तारीख को भी कि आप बच्चों में कोई कम गलतियां, कम पाप नहीं किए, लेकिन बाबा ने सबको माफ किया, क्षमा किया, अपना बना लिया, 63 जन्मों के पापों की गठरी को देखा नहीं, भुला दिया, बच्चे निर्दोष हैं, इन्होंने बुराइयों और विकारों के वश गलत काम किए हैं, ये मेरे बच्चे हैं। कितनी ऊंची भावना रखी, और उस ऊंची भावना से हम सबको, पतितों को बदल करके फूल बनाया, पावन बनाया। इतनी शुभ भावना ने बाबा की, इतना रहम और क्षमा भावना ने हम सब बच्चों को परिवर्तित किया है, और उसको देखते हुए, क्षमा करते हुए, बच्चों को हलचल में देखते हुए बाबा चल रहा, बाबा हलचल में नहीं आया। बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो बाबा भी हलचल में आ जाए। अगर कोई बीमार है और बीमार को देख करके डॉक्टर भी दुखी हो जाए तो उसको दवाई क्या देगा? दुखी नहीं हुआ, उसकी हलचल में, उसकी कमजोरियों में, उसकी कोई भी प्रकार की भूलों को देख करके बाबा ने अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ी। निर्दोष है, बच्चा है, ये परवश हो गया है, संस्कार है पिछले मध्य काल के, इसके आदि काल के संस्कार कितने ऊंचे हैं, इसके अनादि काल के संस्कार कितने ऊंचे हैं, उस ऊंची नजर से देखा, इसलिए क्षमा किया, और उस क्षमा भावना के आधार से अपनी स्थिति को एक रस बना लिया। तो एक एक बच्चे को निर्दोष समझ करके उनके गुणों को देखा, और कभी भी संबंध, लौकिक संबंध के आधार से व्यवहार नहीं किया। चाहे भले लौकिक बच्चे थे, लौकिक बच्चों ने भी समय पर, बड़ा होने पर, कुछ न कुछ भले एक यज्ञ में रहे और चले गए तो भी बाबा ने कहा बच्चे निर्दोष हैं, कोई हर्जा नहीं है, तो भी बाबा ने उनको क्षमा करके उनको भी निर्दोष दृष्टि से देखा। तो बाबा की एक रस स्थिति हर बच्चे के गुणों पर जाने के कारण बनी, हर एक की विशेषता देखी। और यही आज तक भी कहता है कि अगर मेरे माला का लास्ट दाना भी है, 9 लाख की माला में भी लास्ट दाना है, तो भी वो दुनिया वालों से विशेष है, तो भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसने बाबा को पहचान करके बाबा कहा है। इस अच्छाई और विशेषता को देख करके बाबा उसको भी प्यार करता है, उसको भी ऊंची दृष्टि से देखता है, सम्मान से देखता है। इसलिए कोई कितना भी विघ्न रूप भी बने तो भी बाबा ने उनको बच्चे और निर्दोष समझ करके क्षमा कर दिया और अपनी स्थिति को एक रस रखा। तो हम सभी बाबा के बच्चे भी अगर कोई ऐसी नेगेटिव सीन देखते हैं, दिखाई देती हैं, तो इस बार भी बाबा ने यही होमवर्क दिया है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो, नेगेटिव का चिंतन वर्णन करके व्यर्थ को फैलाओ नहीं, उसका विस्तार नहीं करो, उसको फुल स्टॉप लगाना सीखो। अगर हम अपनी एक रस स्थिति बनाना चाहते हैं तो विस्तार को देखना, सुनना, उसका चिंतन, उसका वर्णन, उसके विस्तार में जाकर के उसको विस्तार कर देना। बाबा कहता बच्चे इसको फुल स्टॉप लगाओ। विस्तार में सार्थ को देखने की अगर आदत डाल ली तो आपकी स्थिति एक रस हो जाएगी। अगर गुणग्राही बन गए तो एक रस स्थिति हो जाएगी। अच्छाई कोई है तो भी प्रभावित नहीं होना, नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी। कई बार हम अच्छाइयां देखते देखते, विशेषताएं देखते देखते उसकी तरफ झुक जाते हैं, वो भी बाबा को अच्छा नहीं लगता। विशेषता अगर किसी में है तो किसकी देन है, किसने इसको विशेषता दी है, उस ऊंची नजर से देखो तो आपका झुकाव नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, फंसेंगे नहीं। अच्छाई को भी साक्षी दृष्टा बन करके देखो। अगर कोई बुराई कर रहा है, गलत कर रहा है, तो भी रहम भावना से, शुभ भावना से, परोपकारी भावना से, अपकारी भी है तो भी उस पर उपकार की भावना से उस नजर से देखो और व्यवहार करो। एक रस स्थिति बनाने के ये बहुत अच्छे सूत्र बाबा ने हम सबको दिए हैं। ड्रामा का तो इतना अच्छा ज्ञान है कि कोई आत्मा का पार्ट एक का दूसरे से नहीं मिल सकता है, और जो कुछ ड्रामा अनुसार चल रहा है वो एक्यूरेट चल रहा है। अगर इस बात को हम सिर्फ नॉलेज तक न रखें लेकिन इसका चिंतन करके इसका स्वरूप बन जाएं, तो हम सबके पार्ट को साक्षी होकर के देख सकते हैं और अपनी अच्छी स्थिति में स्थित रह सकते हैं। परिस्थितियां, समस्याएं, विघ्न, कौन ऐसा है कलयुग के अंदर जो कहे कि मेरे आगे कोई भी नहीं आता। हर एक के आगे भिन्न भिन्न रूप से माया अपने नए नए रूप दिखाती है। जब हम योद्धे हैं, जब हम चैलेंज कर रहे हैं, तो माया भी उस चैलेंज को सुनती है। बाबा कहता वो भी सुन रही है, तुमने संकल्प कोई लिया है तो तुम्हारा सामना जरूर करेगी, लेकिन तुम्हें विजयी बनना है। इसलिए चैलेंज है हमको बाबा की कि बच्चे एक रस स्थिति बना करके दिखाओ, हलचल में नहीं आओ। छोटी बात हो गई, कोई ने कुछ कह दिया, मूड खराब कर लिया, नींद नहीं आई, कई बार नींद की गोली भी कईयों को लेनी पड़ती है। बाबा के बच्चे जिनके पास इतना ऊंचा ज्ञान है, जिनकी इतनी ऊंची स्थितियां हैं, वो हलचल में आकर के, किसी बीमारी के वश हैं तो अलग बात है, लेकिन कोई छोटी सी बात हो गई, कोई ने कुछ कर लिया, कुछ हो गया, और उसके फल स्वरूप इतने हमारे व्यर्थ चिंतन चल जाएं, इतना हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाए जो नींद की गोली लेनी पड़े। बाबा कहता बच्चे ये ज्ञान की ग्लानी है। अगर डॉक्टर के पास आप जाओगे और वो आपको तनाव में देखेगा, टेंशन में देखेगा किसी कारण से बीपी बढ़ा हुआ देखेगा तो क्या कहेगा? ये राजयोगी हैं, ये योग कर रहे हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, कहते तो बहुत बातें हैं, करते तो बहुत कुछ, लेकिन इनका जीवन कैसा है? तो बाबा को हम सभी प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, एक रस स्थिति से प्रत्यक्ष करना। एक रस ये नहीं है कि जैसे हैं वैसे हैं ठीक है, एक रस है, लेकिन एक रस माना उमंग है, उत्साह है, उड़ती कला के पंख हैं, नशा है और आगे बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, अथक हैं, थक नहीं रहे, नहीं तो छोटी छोटी बातें थका देती हैं आत्मा को, चिड़चिड़ापन आ जाता है, थकावट होती है, काम करने की सेवा करने की दिल नहीं होती, और थोड़ा सा मन मुटाव हुआ कोई कारण से हो गया तो सेवाएं छोड़ देते हैं, कहते हैं छोड़ो ये सब, यहाँ पर ये लफड़ा है, यहाँ पर ये झंझट है, यहाँ ये बात है, यहाँ ये बात है, छोटी छोटी बातें लेकर के अपने मन को खराब करके, मूड को खराब करके, डिस्टर्ब होकर के बाबा की सेवाएं, बाबा की पढ़ाई, बाबा के कार्य से विमुख हो जाना, बाबा कहते ये भी वास्तव में एक प्रकार की अज्ञानता की नींद है। जैसे वो नींद थकावट से आती है, जब बहुत थक जाता है तो आलस्य आता है, नींद आती है, ऐसे ही मानसिक रूप में थकी हुई आत्माएं जो किसी भी कारण से डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो अज्ञानता की नींद में सो जाती हैं। उन्हें ज्ञान की रोशनी मिलते हुए भी, ज्ञान की इतनी पढ़ाई मिलते हुए भी लगता है कि कोई जीवन में रस नहीं है। अगर कोई बाबा का बच्चा नीरस जीवन का अनुभव करे, इतनी रस वाली जीवन, इतनी मौज और मनोरंजन वाली जीवन जिसमें भगवान पढ़ा रहा है, भगवान पालना कर रहा है, आज भी स्लोगन में कहा कि बाप तो सभी कह रहे हैं लेकिन पालना और पढ़ाई का अनुभव किसको? हम सभी बहुत फखुर से, बहुत नशे से कहते हैं कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, भगवान की हमें पालना मिल रही है, इसका हमने अनुभव किया है, आंखों ने देखा है, अनुभवों की आंख से हमने जाना है, पहचाना है। जब इतना ऊंचा जीवन हम सबको बाबा ने दिया है, पवित्र बनाया, निर्विकारी बनाया, स्वच्छ बनाया, निश्चिंत निश्चल बना दिया, तो हम सभी अपने उस ऊंचे समान से, अपनी स्थिति से एक रस स्वरूप में स्थित रह करके, बातें भले भिन्न हों, संस्कार भले भिन्न हों, कोई कुछ भी हमें बोले, लेकिन अगर मैं श्रीमत के प्रमाण चल रहा हूं, स्थिति को हिलाने वाली केवल तीन बातें हैं, वो एक है मन मत। कई बार हम बाबा की श्रीमत में अपनी मन की मत को ऐड कर देते हैं, बाबा तो कहता है आठ ही पास होंगे, सब तो पास होंगे नहीं, बाबा तो कहता सजाओं से केवल आठ या 108 ही छूटेंगे, बाकी सबको खानी पड़ेंगी सजाएं। कुछ एक बाबा की बातों को हम ढाल के रूप में बना लेते हैं और वो ढाल के रूप में बाबा की बातें हमारे लिए पुरुषार्थहीन बना देती है। इसलिए हम सभी बाबा की इस बातों को लेकर के रेस करें, न कि अलबेले हो जाएं, हो जाएगा, बन जाएंगे, कलप पहले बने होंगे तो बन जाएंगे, ऐसी ऐसी भाषा आलस्य और अलबेलेपन की निशानी है। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे बाबा की बताई हुई शिक्षाओं को, श्रीमत को कभी भी उसमें मन मत ऐड न करें, नहीं तो स्थिति एक रस नहीं बन सकती। दूसरा, देहाभिमान की मत, बॉडी कॉन्शियस में जब आत्मा आती है तो कर्म इंद्रियों से कोई न कोई भूल करती है और कर्म इंद्रियों की अधीनता उसकी स्थिति को एक रस रखने नहीं देती। तीसरी, शूद्रपने की मत, शूद्रों की मत कहें या शूद्रपने की मत, जो हमें शास्त्रों से, व्यक्तियों से, विद्वानों से या संबंधियों से मिल रही है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, अनेक प्रकार के क्यों, क्या, कैसे के व्यर्थ के प्रश्न डाल देते हैं और हम उन प्रश्नों में उलझ जाते हैं, शूद्रपने की मत का प्रभाव पड़ जाता है, आत्मा एक रस स्थिति में नहीं रह सकती। अगर ब्लड कनेक्शन के वशीभूत हम एक दूसरे से संबंध निभाते हैं। बाबा ने हम सबको कहा है कि आप सभी ब्राह्मण बने हो, इसलिए मर्जीवा हो। आपका ये अलौकिक बर्थ हुआ है, अलौकिक जन्म है, इसलिए कभी भी ये मेरा बहुत नजदीकी संबंधी है, इसके साथ मेरा ब्लड कनेक्शन है, इसकी गलती मेरे से सहन नहीं होती। इस प्रकार की जो भाषा का प्रयोग है ये ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। सच्चे ब्राह्मण कोई भी ब्लड कनेक्शन नहीं रख सकते हैं, उनका कनेक्शन केवल सेवा का है, संबंध हमारा सेवा से है। इसलिए बाबा ने जो एक रस स्थिति बनाई, बच्चों के दुख में, लौकिक के भी दुखों में दुखी नहीं हुआ, अलौकिक के दुखों को भी देख करके बाबा ने साक्षी स्थिति से एक रस स्थिति में रहा। यहां तक बाबा के सामने जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था, मुझे वो मुरली मम्मा की, जिस दिन बाबा के सामने मम्मा का पार्थिव शरीर रखा था, उस दिन बाबा ने जो मुरली सुनाई है आप सबको याद होगी, 2 साल पहले वो रिवाइज की थी हमने वो मुरली। मम्मा का शरीर सामने है और बाबा मुरली चला रहा है, इतना निश्चिंत, इतना बेफिक्र, इतना एक रस। यज्ञ मदर जो इतने बच्चों की पालना करने वाली, जिसके लिए बाबा कहता था ये तो बच्ची जा ही नहीं सकती है पहले, वो अचानक शरीर छोड़ दे और वो सामने रथ हो, शरीर हो पार्थिव, और बाबा की बेधड़क मुरली चल रही हो, बच्चों के अंदर बल भर रहा हो, बच्चे तुम्हारी माँ कभी जा ही नहीं सकती है, माँ तो ये जगदम्बा शरीर के रूप से है लेकिन तुम्हारी असली माँ तो ब्रह्मा माँ है। इस प्रकार से बाबा ने वो मुरली चलाई है जो बच्चों के आंसू आने नहीं दिए, कोई बच्चा एक भी आंसू नहीं बहा पाया जब तक बाबा सामने थे। अब आप समझ सकते हो जो इतना प्यार जिससे था, माँ के रूप में जिन्होंने पालना ली, वो सामने शरीर छोड़ करके हो और बाबा इतना चैलेंज से मुरली चला रहे हो, बच्चों को एक रस स्थिति में स्थित कर दिया। तो इस प्रकार से बाबा की कोई भी परिस्थिति, कोई भी घटना, कोई भी प्रकार की दुनिया की समस्याएं, चाहे दैहिक आई, चाहे पारिवारिक आई, चाहे समाज के द्वारा आई, चाहे सरकार के द्वारा आई, चाहे प्रकृति परिस्थिति के वशीभूत आई, चाहे आर्थिक रूप में आपने सुना होगा वेगरी पार्ट कैसा चला, हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए बाबा अपनी एक रस स्थिति में रहे। और अब हम बच्चों को यही बात पढ़ा रहे हैं, बच्चे बहुत काल की स्थिति आपकी चाहिए, अंतकाल में वही स्थित रह सकेगा जिसने बहुत काल इस बात पर अटेंशन रखा है। तो हम सभी कल का दिन कैसे मनाएंगे, अव्यक्त दिवस है, स्मृति दिवस है, विशेष दिन है, इसलिए हम सब इस वरदानी दिन को इतना साइलेंस से मनाएं, बाबा की हाजिरी का सवेरे अमृत वेले से अनुभव करते हुए वरदान लें, सकास लें, और बाबा को बस यही कहें, बाबा अब तो मुझे अपनी एक रस अथक अचल अडोल स्थिति में स्थित रहना है। कितनी भी संसार की विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, हमारे सामने ही दुख के पहाड़ क्यों ना आ जाएं, लेकिन ये स्थिति मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं हिलने नहीं दूंगा, आपका हूं, आपका होकर के रहूंगा, अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में रहूंगा, अपने अकाल तख्त से मैं नीचे नहीं उतरूंगा। ये हमारा सबका तख्त बाबा ने जो दिया है, इस तख्त पर बैठने का अभ्यास और अनुभव तो करो। ये बॉडी कॉन्शियस के रस इतने आकर्षित कर लेते हैं, बोलने का इतना रस, एक बोलने लगेगा 10 लोग चू चू करने लगेंगे, लेकिन अकाल तख्त पर बैठने का रस लो। कम से कम कल का दिन जो है, ये अकाल तख्त नसीन हूं और बाबा के दिल तख्त नसीन हूं। भविष्य तख्त हमारा निर्धारित है, वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसकी चिंता न करके मुझे अपने अकाल तख्त पर विराजमान रहना है। और जब आत्मा अपने अकाल तख्त पर रहेगी, वाणी में आने की इच्छा ही नहीं होगी, आवाज से हम परे चले जाएंगे। तो कल का स्मृति दिवस बाबा से अथक और एक रस स्थिति का वरदान लें, और उस स्थिति में स्थित होकर के हम कल बाबा से शाम को अव्यक्त मिलन मनाएं, डायरेक्ट साकार पालना का अनुभव करें। तो बहन जी अभी आ गई हैं, कुछ डायरेक्ट संस्कल के लिए सुनाएंगी, आप सभी सुने और उसके बाद 3 मिनट बाबा की प्यार की, बाबा की गोदी में जाकर सोएं। तो इसलिए प्यार में बैठ करके योग करके हम सभी यहाँ से उठेंगे।